السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. आजकल हम अपनी नमाज को बेहतर बनाने के लिए नमाज का तर्जमा, उसकी तशरीह सीख रहे हैं, और उम्मीद है कि आपकी नमाजों में इसकी वजह से फ़र्क आ रहा होगा। आप इन बातों को अप्लाई कर रहे होंगे अपनी नमाजों में। मुश्किल ये है कि आजकल बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ना छोड़ चुके हैं, जबकि अल्लाह ताला ने सूरह मुदस्सिर में फ़रमाया कि जो लोग जहन्नुम में होंगे उनसे जब पूछा जाएगा कि आपको जहन्नुम में क्या चीज़ लेकर आई, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इससे पता चलता है कि नमाज ना पढ़ना इंसान को जहन्नुम तक लेके जा सकता है। और बहुत बेशुमार हदीस ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि नमाज पढ़ने के क्या फ़वाद हैं, और नमाज ना पढ़ने वाला किन लोगों में शामिल हो जाएगा कयामत के दिन, और काफिर में और एक मुसलमान में फ़र्क ही नमाज का है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिन में समझते हैं कि अगर दो तीन नमाजें भी पढ़ लीं तो काफ़ी है, बाकी परवाह नहीं करते। अगर एक दो छूट भी जाएं तो ज़रा सी कोई मुश्किल हुई, ज़रा सी थकन हुई, ज़रा सी नींद ज़्यादा आ रही है, तो वो नमाज़ को छोड़ देते हैं, या किसी काम के लिए कहीं निकलना पड़ गया तो नमाज़ उनकी कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं होती कि जिसके लिए वो अपने प्रोग्राम चेंज करें या कहीं रुक के नमाज़ पढ़ें। उनके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि जूँ ही अज़ान हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो जूँ ही अज़ान हो तो जब अल्लाह अकबर कहा जाए तो उसको समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से कॉल आई है। देखें, ऐसे इसको समझें, जहन में इस तरह से बिठा लें इस बात को कि जैसे कयामत के दिन भी आपको पता है ना कि लोगों को पुकारा जाएगा और अल्लाह ताला के हजूर पेश किया जाएगा। हर नफ्स हशर के मैदान में इस इंतज़ार में होगा कि कब उसका नाम लिया जाए और उसकी पेशी हो, उसका हिसाब किताब शुरू हो। तो जब अज़ान होती है तो ये भी एक पेशी है, ये भी एक कॉल है अल्लाह ताला के आगे खड़े होने की, जैसे कयामत के दिन एक कॉल होगी अल्लाह ताला के आगे खड़े होने की। तो ये दुनिया में अल्लाह ताला के आगे खड़े होने की पुकार है, कयामत के दिन हमारा नाम लेकर ये पुकार दी जाएगी। तो जब भी अज़ान शुरू हो, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हो, तो यही मतलब है कि चलो अल्लाह ताला के आगे खड़े होने के लिए। और इसमें कोई चीज़ भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अल्लाह हु अकबर का मतलब यही है, अल्लाह सबसे बड़ा है। चाहे वो मेरे घर के काम हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे मेरी कोई ख़ास मीटिंग हो, चाहे जॉब पे हैं, चाहे कोई भी है, लेकिन अल्लाह अकबर है, हर चीज़ से ज़्यादा अकबर है। तो हर चीज़ छोड़ी जा सकती है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है। उसके आगे खड़ा होना सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रायोरिटी की बात है, क्योंकि कोई चीज़ मेरे नज़दीक है ही नहीं बड़ी। देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की गर्दान है अज़ान में भी, इकामत में भी, हमारे नमाज शुरू करने में भी, और नमाज में भी बार बार हम अल्लाह अकबर कह कह के दूसरी पोजीशन में जाते हैं, एक से दूसरी पोजीशन में जाते हैं। और उसके अंदर भी अगर जहन इधर उधर भटक भी गया है, कोई और चीज़ का ख्याल आने लगा है, तो अल्लाह अकबर जब आप कहते हैं तो एक काइंड ऑफ एक इंसान के लिए जागने के लिए ये पुकार हो गई कि अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है ना। वो चीज़ जिसके बारे में बस सोच रही हूँ, उसने क्या कहा, इसने ये हो गया, आज क्या पकाना है, आज किधर जाना है, इधर कुछ ना कुछ तो सोच रहे होते हैं ना, तो उन सब चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह अकबर है। ताकि बार बार जहन आए इस तरफ को कि अकबर ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, मैं किन सोचों में घूमूं। तो सोच लें कि जो पुकार वहाँ पे आनी है वो ही आज दुनिया में अल्लाह अकबर कह के और हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह कह के मुझे दी जा रही है। तो उस दिन तो आना ही पड़ेगा, उस दिन तो इंसान इनकार नहीं कर सकेगा। लिहाजा आज भी जब मेरे लिए पुकार लगे तो मैं अल्लाह ताला के आगे खड़े होने की तैयारी शुरू कर दूं। और वो तैयारी कैसे होती है? वुजू करके होती है। वुजू भी आपको पता है ना, ना सिर्फ हमारे अज़ा को धोने का जरिया है बल्कि हमारे गुनाहों को झाड़ने का जरिया भी है। जब आप चेहरे के ऊपर पानी डालते हैं तो आप अपनी चेहरे के गुनाहों को धो डालते हैं। मुंह में पानी डाला तो जुबान के गुनाह धुल गए, आंखों के गुनाह धुल गए, कानों में मसा किया तो कानों के गुनाह धुल गए, सर के गुनाह धुले, बाजुओं के, पैरों के। तो आप गुनाहों से पाक हो के अल्लाह ताला के आगे खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। छोटे छोटे गुनाह इससे धुल जाते हैं। तो इस तरह की तैयारी हम करते हैं, जैसे कि हम किसी मसलन अहम शख्सियत से मिलने के लिए जा रहे हों, किसी पार्टी के लिए, किसी शादी के लिए। जितना बड़ा इवेंट होता है उतनी बड़ी हम तैयारी करते हैं। बाज़ जगह के लिए हमने तैयार होना होता है तो हम खुद नहीं तैयार होते, हम फिर किसी जगह पे जाते हैं, किसी सलून में, और कोई किसी और को कहते हैं कि वो कोई ब्यूटिशन हमें तैयार करे क्योंकि आज बहुत बड़ा इवेंट है। तो रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना कोई मामूली बात तो नहीं है ना। इसलिए वुजू को अच्छी तरीके से करें कि मैं वो तैयारी कर रही हूँ अपने रब के आगे खड़े होने की। मैं ये गंदगियाँ लेके नहीं जा सकती, वैसे भी नहीं, जिस्मानी भी नहीं, लेकिन साथ साथ मेरे गुनाहों की भी धुलाई हो रही है। और वो रब्बुल आलमीन कौन है जिसके आगे हमने सारी बात अभी तक की है कि हम रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होते हैं, उसकी सना बयान करते हैं, उसकी हम्द बयान करते हैं, और हम हाथ बांधे हुए कितनी आजजी से खड़े होते हैं, जैसे कोई फकीर है, या जैसे कोई गुलाम है, या जैसे कोई लाचार है। इस तरह से हम उसके आगे खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध के, नजरें झुकी हुई हैं, नजर उठती नहीं है, ना इधर देखना, ना उधर देखना, ना किसी से बात, ना कोई टेक्स्ट, ना कोई फोन, ना को, सब चीजें हमने छोड़ दी, हमने अल्लाह अकबर कह के सारी दुनिया को पीछे फेंक दिया। जब अपने हाथ खड़े किए हमने अल्लाह अकबर कहने के लिए तो सब कुछ पीछे डाल दिया, लेकिन फिर भी ख्यालात आते हैं। इसीलिए हम तावुज़ पढ़ते हैं ना, पहले आउज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम तो नहीं बच सकते इन वसवास से, शैतानी ख्यालात से। तो अल्लाह ताला तू ही हमें अपनी पनाह में ले लेगा तो हम बच सकते हैं, अल्लाह तू हमें अपनी पनाह में ले ले। तो हमने वो भी पढ़ लिया, फिर हमने कुरान का एक हिस्सा पढ़ा, सूरह इखलास भी पढ़ी। लेकिन सारी ज़िंदगी आप सिर्फ सूरह इखलास पे ना रहिएगा, मैंने आपको जैसे बताया था सूरह इखलास के साथ कुछ और सूरत मिला लीजिए, कोई और सूरत भी पढ़ें, फिर ठीक है। आपको सूरह इखलास के साथ मोहब्बत है तो ये मतलब नहीं कि हर नमाज की हर रकत में आप सिर्फ और सिर्फ सूरह इखलास सारी ज़िंदगी पढ़ते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि देखें, जब आप सिर्फ एक ही सूरत पढ़ते रहेंगे या एक ही तस्बीहात पढ़ते रहेंगे, मैंने आपको सना के लिए भी तीन तरह की सना बताई, और वो इसीलिए कि आप एक पढ़ें या दूसरी या तीसरी, इनमें से एक आपको पढ़नी है। आप इसी वजह से कि आप जब एक ही पढ़ते रहेंगे तो ऐसा होता है कि इंसान की जुबान उसकी आदी हो जाती है। फिर उसके बाद जब इंसान उसको बोलता है तो वो ऐसे बोलता है जैसे कोई मशीन होती है, फिर उसका जहन उसके अंदर लगता नहीं। जब जहन नहीं लगेगा तो जहन कहीं और फिर सोचे सोचने लगेगा, कोई और सोच आएगी, जाहिर है फोकस्ड इस तरफ नहीं है तो कहीं और तो फोकस होगा। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हमारे अंदर ये हो गया कि हम फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पे भी नहीं कर पाते। ये नहीं कि सिर्फ नमाज में नहीं, आप बच्चों को देख लें, उनका भी फोकस ख़त्म हो चुका है। और ये वजह, यही सब गैजेट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कि हम फोकस कर ही नहीं पाते, किसी एक तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। तो नमाज के अंदर तवज्जो देने का एक तरीका यह है कि जब आप बदल बदल के भी सूरतें पढ़ेंगे, अगर आपको बहुत सारी नहीं आती, कुछ 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतें ही याद कर लें, या बड़ी सूरतें जैसे सूरह बकरा है उसके एंड की तीन आयतें याद कर लें, सूरह आले इमरान की एंड की तीन आयतें याद कर लें, सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर लें, इतना सा भी आप पोर्शन पढ़ लेते हैं तो आप बदल बदल के जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज के अंदर ज़्यादा खुशू होगा, तवज्जो होगी। क्योंकि जाहिर है जब नई चीज पढ़ेंगे ना तो दिमाग उस तरफ तवज्जो करेगा क्योंकि ये डर होगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए, लेकिन जब एक ही चीज आप पढ़ते रहेंगे तो फिर जाहिर है आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने वो शुरू की, कब आपने वो खत्म भी कर दी, और एक मशीन की तरह रुकू सजदा इसमें चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमने ये बात की थी कि हम जब रुकू में गए, सुभान और रब्बी अल आज़ीम, हमने कहा कि मेरा रब बड़ा अजमतों वाला, पाक है मेरा रब जो बड़ी अजमतों वाला है। तो अल्लाह ताला की अजमत वाकई मेरे दिल में आनी चाहिए कि हर चीज दुनिया की जो है ना मामूली, अजीम का मतलब समझते हैं आप, जो अजमतों वाला बड़ा है, कि यानी उस मतलब ये कि उसमें जो भी सिफात है ना, जो भी उसमें खूबियां हैं, वो आला दर्जे की हैं। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से उसका एक नाम अल अजीम है ना, तो अल्लाह अल अजीम है, यानी उसकी उसकी जितनी भी सिफात है, मसलन अलीम है, खबीर है, समी है, बसीर है, वदूद है, मुजीब है, जितनी भी सिफात है ना उसकी, वो अजीम सिफात है। मसलन वो उसका इल्म है, तो इंसान का जी मैं भी इल्म वाला हूँ, इंसान का इल्म लिमिटेड है, इंसान का इल्म उसने कहीं से लिया हुआ है, इंसान का इल्म हमेशा के लिए नहीं है, वो जिंदा है, थोड़ा सा इल्म है उसके बाद वो भी खत्म हो गया, और बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही थोड़ा है। अल्लाह ताला का इल्म ला महदूद है, उसका उसकी ये सिफत भी अजीम सिफत है, हमेशा से है उसका, और हमेशा आगे का भी इल्म है उसको, और ये सिफत किसी और के पास नहीं है, सिर्फ उसके पास है ये अजीम सिफत। यानी उसकी ये वाली सिफत भी अजीम है, जितनी भी सिफात है अजीम है। ठीक है, अब आपको जब ये दिल में एहसास हो गया ना, तो फिर दुनिया की हर चीज आपको हल्की लगेगी, इसलिए कि आप एक अजीम रब के पास सामने खड़े हैं। फिर आपको अपने गम भी बहुत छोटे से लगने लगेंगे। देखिए, अगर किसी बच्चे को ये पता चल जाए कि मेरा वालिद जो है वो बिलियनेयर है, और ये जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ ये 1 डॉलर की है, तो कभी परेशान होगा, इसलिए कि वो कहता है कि मेरा वालिद इतने इस पे कादिर है कि मेरी डिमांड पूरी कर दे, वो तो फिर सारे जहान से मुस्तगनी हो जाएगा ना, कि मुझे किसी और की क्या जरूरत, मेरे लिए मेरा बाप ही काफी। वो अपने बाप की उंगली पकड़ेगा, कहेगा यही मुझे लेकर देगा, ये मेरी जरूरत पूरी कर सकता है। तो जो ये जान ले कि जिसके आगे मैं सर झुका के खड़ा हुआ हूं, वो रब मेरा पाक रब बड़ी अजमतों वाला है, फिर वो परेशान नहीं होगा। ये परेशानी तो बहुत छोटी सी है, मेरा रब तो अजीम है, कोई मुश्किल उसके लिए मुश्किल ही नहीं, उसकी हर सिफत आला और अजमत वाली है, मेरे लिए ये बड़ी चीजें हैं, उसके लिए तो नहीं है। और इसी तरह दुनिया में हर एक का खौफ खत्म हो जाएगा, किसी का क्या खौफ रखना, जिसकी देखें डायरेक्ट सदर के साथ जिसके कॉन्टेक्ट हो जाएं, वो पुलिस इंस्पेक्टर को क्या समझेगा, वो कहेगा मेरा तो जी डायरेक्ट सदर के साथ राबता है। तो जिसका अल्लाह ताला से डायरेक्ट राबता हो जाए, वो फिर किसी से क्यों डरेगा। तो इंसान जब रुकू करता है ना, तो 3 तरीके से वो रुकू में जा रहा है, वो अपने जिस्म को भी झुका के ये इतराफ़ कर रहा है कि अल्लाह तू बड़ा है, तू अजीम है, अजमत वाली जात तो तेरी है, मैं तो ये हूँ जिसका सर झुका है। वो जुबान से भी कह रहा है मेरा रब अजीम है, यानी जिस्म से भी कहा, जुबान से भी कहा, और उसका दिल भी ये कह रहा है, उसमें भी ये एहसास है कि मेरा रब कितनी अजमतों वाला है, तब नमाज में मजा आता है, फिर सारी टेंशन दूर हो जाती, मेरा रब तो इतना अजीम है, मैं क्यों किसी चीज की टेंशन लूं। लेकिन जब हम इतनी तेजी से पढ़ रहे होंगे रबी हम स्वामी स्वयं, तो फिर हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा सी परेशानी होती थी, आंधी भी आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ दौड़ते थे, क्यों, इसलिए कि आपको पता था कि मेरा पाक रब बड़ा अजीम है, आंधी तूफान क्या चीज़ है, और ये दुश्मन मेरे क्या चीज़ है। और अगर कोई सबब भी आपने इख्तियार करना है, तब भी उम्मीद अल्लाह ताला से ही रखें कि वो रब जो बड़ा अजीम है, वो ही मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो सबब बनाएगा। तो ये बड़ा बहुत बड़ा कलिमा है जो इंसान जुबान से अदा करता है, और उसके बाद जब वो खड़ा होता है, तो इस तरह के सारे अज़ा आपके अपनी जगह पे आ जाने चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, रुकू सजदा ये जो कौमा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक्वल होते थे, ऐसे नहीं कि बस खड़े हुए ही नहीं और बस जल्दी से सजदे में चले गए, नहीं, ये फिर आपकी नमाज नहीं होगी, ये भी एक स्टेप है ना नमाज का। तो बजाय इसके कि इंसान ये कहे जी मैंने तो चूंकि 20 रकात पढ़नी है, तो जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, तो फिर मैंने इतनी देर में ख़त्म करनी है, नहीं, उससे बेहतर आप 10 पढ़ लें, या 4 पढ़नी है तो 2 पढ़ लें, लेकिन अच्छे तरीके के साथ पढ़ें, अल्लाह ताला को आपकी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, मगर अल्लाह ताला आपकी क्वालिटी देखता है कि कितनी अच्छी तरह पढ़ा है, इतना दिल लगा के पढ़ा है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए, मैंने आपको बताया था समी अल्लाहु लिमन हमीदा हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये मैंने आपको कहा था आप याद कर लें। और मैंने आपको क्या बताया था, स्पेशल एक फोर्स है, स्पेशल टास्क फोर्स, जो 30 फरिश्ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने 30 से भी ज़्यादा फरिश्ते देखे, उन सहाबी को फरमाया था ना कि 30 से भी ज़्यादा फरिश्ते देखे जो लपक कर आ रहे थे इन कलिमात को लेने के लिए। तो इसका मतलब किरामन कातिबीन तो लिखते ही हैं, वो तो लिख ही रहे हैं, लेकिन इसके लिए, इन कलिमात के लिए, इतने खूबसूरत कलिमात के हर फरिश्ता इस कोशिश में था कि मैं इस दुआ को लेकर अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। कितने प्यारे कलिमात होंगे। तो स्पेशल फरिश्ते इसके लिए उतरे। तो लिहाजा इन चीजों को समझ के करना चाहिए। और आप, हम पढ़ रहे थे कि सजदा कितनी अजीम चीज है। सजदा जो है ना, ये इंसान को, मैंने आपको बताया था, अल्लाह ताला के करीब कर देता है। उस वक्त आप अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। आप अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले गए, अब भी आपने सारी जो भी बातें जहन में आ रही थी पीछे डाली और आपने अल्लाह अकबर कहा। आप यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जब आप सजदे में पहुंच गए हैं, तो सजदे की आप जो तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे आला है, अल आला भी अल्लाह ताला का नाम है, ठीक है, सबसे बुलंद है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला आता है ना कुरान करीम में, सूरह आला। तो तस्बीह करो अपने रब की जो आला है, तो हम उसी पे अमल कर रहे होते हैं। तो यानी उसकी उसकी जात भी आला है, बुलंद है, उसकी सिफात भी सबसे बुलंद है, उसका हर मामला हर काम सबसे ऊपर है, बुलंद है, आला है, उसका हर हुक्म आला है। तो अब आप सोचिए, उसका हर फैसला आला है, वो अपनी हर बात में आला है, अपनी कुदरत में भी आला है, बुलंद है, सबसे बरतरी रखता है। तो देखिए ना, अब जितना बड़ा कोई होगा ना, उतना ही उसकी बात को आप अहमियत देते हैं। अब एक छोटा सा सिपाही एक बात करता है, तो आप एक ठीक है थोड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन आपको पता चले कि वजीर आला की तरफ से हुक्म आया है, तो आप खड़े हो जाते हैं और सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, जी वो जो वजीर आला ने बात कही है, क्या फर्क है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, क्या फर्क है। उसका, वजीर आला का आपकी नजर में मकाम बहुत बुलंद है, इस वजह से उसकी बात का वजन ज्यादा है। तो जब अल्लाह ताला का मकाम हमारे दिल में बुलंद होगा ना, तो फिर हमें किसी और की बात कोई बड़ी नहीं लगेगी, फिर अल्लाह की बात सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है, फिर उसकी बात के आगे हम किसी की बात को अहमियत नहीं देंगे। फिर हम ये नहीं कहेंगे हाय अब हम क्या करें, किसी और ने ये कह दिया तो अब हम कैसे ना उसकी माने। नहीं, आला जात तो अल्लाह ताला की है। और देखें आप इस वक्त भी किस पोजीशन के अंदर होते हैं, सारा का सारा जिस्म भी अल्लाह ताला के आगे डाला हुआ है, जुबान पे भी एक ही कलमा है सुबहान और रब्बी अल आला, और मैंने आपको दूसरी भी सज्दे की तस्बीहात बताई थी, इसी वजह से कि आप जरूरी नहीं कि बदल बदल के पढ़ें, एक ही पढ़ें आप, नहीं, आप सारी भी पढ़ सकते हैं, आप दो तीन भी पढ़ सकते हैं, आप सिर्फ अकेली ये सुबहान रब्बी अल आला की तस्बीह भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें दिल से करें। अब आपकी जुबान पे भी ये कलिमात हैं और आपका जिस्म भी झुका हुआ है और आपका दिल भी ये बोल रहा है कि मेरा रब जिसके आगे मैं झुकी हुई हूँ बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। वो कितना बुलंद है, उसकी बुलंदी की हद नहीं, मुझे, मैं जान ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी बुलंदी जहां पे मेरी अकल खत्म हो जाए वो उससे ऊपर है, उससे भी ज्यादा बुलंद है, और मेरी हकारत की, जिल्लत की कोई इंतहा ही नहीं है, मेरी कमतरी की कोई इंतहा ही नहीं है, मैं ये हूं। और इंसान अपने आप को इस तरह से शो करता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आजजी की पोजीशन है, सबसे ज्यादा आजजी की पोजीशन है, जिसमें आपने अपनी नाक भी जमीन के ऊपर टच की हुई है, अपना माथा भी टच किया हुआ है, और ये चेहरा है ना, ये इंसान की पहचान होता है, इसी को इंसान सबसे ज्यादा संवारता, सजाता और खतरे से भी बचाता है। ये उसकी पहचान है। तो जब ये झुका हुआ है तो ये जिल्लत का इजहार है, सबसे ज्यादा इजहार इसके जरिए हो रहा है कि इंसान ने अपने आप को कितना कमतर कर लिया कि अपनी नाक भी जमीन पे रख दी। हम लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ मुहावरा है कि जी मेरी नाक का मसला है, हमारी तो नाक कट जाएगी, कहते हैं ना, नाक बड़ी चीज है, नाक रखनी है हमने, क्या करें, अपनी नाक भी तो रखनी है। तो जब इंसान ने अपना नाक ही जमीन पे किसी के आगे रख दिया, उस हस्ती के आगे, तो असल में इंसान क्या कह रहा है, मेरी नाक कुछ नहीं है, मेरी नाक कटती है तो कटे, यानी मेरी बेइज्जती होती तो हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे रब का हुक्म सबसे ऊपर, उसके हुक्म के आगे मेरी अना कुर्बान, मेरी नाक का मसला कोई नहीं, मेरी इज्जत का मसला कोई नहीं। ठीक है, तो यानी इंसान फिर परवाह नहीं करे अल्लाह ताला के हुक्मों के आगे किसी और की बात, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से भी बता रहा है, वो अपनी जुबान से भी बता रहा है। तो फिर हमें कोई अगर कहता है ना कि देखें ये नहीं सही है, इस तरह से नहीं करें, ये खिलाफे शरा काम है, तो हम आगे से कह देते नहीं, हम क्या करें, फिर हमारी नाक कट जाएगी माशरे में। तो सदे में आपने यही तो अपनी नाक जमीन पे रख के कह दिया था कि मेरी नाक कोई चीज नहीं, लेकिन फिर इंसान अपनी नाक को ही अहमियत दे। और फिर मैंने आपको बताई थी सज्दों, दो सज्दों के दरमियान की तस्बीहात, और हर वक्त उठते हुए दोबारा जाते हुए हम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, एक ही गर्दान हमने लगाई हुई है कि सबसे बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है, बार बार ये कहते जा रहे हैं, लेकिन क्या मेरी जिंदगी में मेरा अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, क्या वाकई है या नहीं, या और चीजें बड़ी हैं, इसीलिए मैं भाग भाग के उनकी तरफ को जाती हूं, जब अल्लाह ताला बुलाता है तो मैं परवाह भी नहीं करती, जब अल्लाह का हुक्म आता है तो मुझे कोई उसकी अहमियत ही नहीं होती, जैसे कोई बच्चा कह दे या अल्लाह का हुक्म आ जाए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो मेरे लिए ऐसे ही है जैसे कि बच्चे ने बात कर दी तो मैंने आई गई कर दी, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, बच्चे की बात है क्या फर्क पड़ता है, ऐसे हम कह देते हैं ना। वो ही कहीं आपकी सोचे बॉस की बात आ जाए, ऑफिस में आपका बॉस कह दे तो आप कैसे खड़े हो जाते हैं उसकी बात के ऊपर, या उससे भी बड़ी चीज कह लें कि आप इस जो सिटी का गवर्नर है वो कह दे, या फिर मुल्क का सदर कह दे, तो थर थर कांपने लगेंगे, जी उसका हुक्म आया, और अल्लाह ताला की बात की इतनी भी अहमियत नहीं, और नमाजों में कहते जाते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो क्या हम समझ भी रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, और वाकई ऐसा है भी, या ये झूठ है जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जुबान जो कह रही है हमारा अमल वो नहीं कहता, हम गलत बयान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अल्लाह ताला को अकबर समझते ही नहीं, हमारे लिए पैसा अकबर है, हमारे लिए चीजें अकबर हैं, हमारे लिए हमारे घर अकबर हैं, हमारे लिए हमारी औलादें अकबर हैं और आला हैं। फिर ये शिर्क नहीं हुआ तो और क्या है। तो नमाज तो आजी सिखा देती है कि अल्लाह ताला के आगे झुकना, इसीलिए जब कहा जाता है कुरान करीम में कि नमाज बुराई से और फहाशी से रोकती है, तो इसी तरह रोकती है ना, जो इंसान ये सब कह रहा होगा वो कैसे फिर उसके बाद उठ के अल्लाह की नाफरमानी कर लेगा, गुनाहों से कैसे रोकती है, इसी तरह तो रोकती है, जिस बंदे ने ये सब दिल से कहा वो कैसे फिर कुछ और करेगा। तो इंसान अपनी आजजी अपनी तवाजो इख्तियार करता है, अपने आप को झुका लेता है, अब इंसान के आगे सबसे आला हस्ती अल्लाह ताला की हस्ती है, क्योंकि वो कह रहा है सुबहान और रब्बी, मेरा रब आला है, मेरा पाक रब आला है, बार बार ये कहता जा रहा है, बार बार ये अपनी जुबान से एक दफा नहीं तीन दफा कम अज कम अदा कर रहा है, और उससे भी ज्यादा दफा। तो जिसका रब उसका हो गया तो फिर तो सारी दुनिया उसकी हो गई, फिर सारी दुनिया उसके कदमों में है, क्योंकि सब कुछ देने वाला तो वही है। वो किस्सा आपने महमूद और अय्यास का सुना होगा कि महमूद ने ऐलान किया कि आज मेरे दरबार में जिस चीज की जिसको ख्वाहिश हो, जो चीज चाहे लेना चाहे तो वो ले ले, जिस चीज पे हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो गई, चाहे कितनी भी कीमती हो। अब लोग भागे, किसी ने कोई कीमती चीज ली, किसी ने कोई कीमती चीज ले ली, किसी ने कोई ले ली। अच्छा, जब अय्यास की बारी आई तो उसने किसी चीज की तरफ नजर भी उठा के नहीं देखा, और बादशाह के सर पे जाके हाथ रख दिया। सब हैरान हुए कि इसने ये क्या किया, किसी ने हीरे जवाहरात लिए, किसी ने और चीजें, कीमती कीमती चीजें नहीं, इसने बादशाह के सर पे हाथ रख लिया। उसने कहा कि मैंने बादशाह से सर पे हाथ रखा, बाकी सब ने कोई सोना, कोई चांदी, कोई चीजें ली हैं, मैंने बादशाह के सर पे हाथ रखा कि जब बादशाह मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा हो गया। जो इंसान अल्लाह का हो जाए ना, फिर सब कुछ उसका हो गया, फिर कोई चीज उसके लिए नामुमकिन रह ही नहीं गई, फिर कोई चीज उसके लिए उसकी पहुंच से बाहर नहीं रह गई, फिर कोई चीज उसके लिए ऐसी नहीं है जो कि वो कहे कि ये नामुमकिन है, इसलिए कि हर चीज फिर अल्लाह ताला उसको अता करने वाला है, फिर हर चीज फिर अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं, अल्लाह ताला जो चाहे उसको अता करे, फिर तो वो गनी हो गया, फिर तो वो गनी हो गया, फिर तो उसके वो आला रब से उसकी दोस्ती हो गई, फिर तो उसके लिए सारी दुनिया खुल गई, जो परेशानी है फिर जो मसला है वो हल कर सकता है, फिर उसको क्या फर्क पड़ता है। वो इसलिए इंसान ये सोचे कि मैंने किसके साथ ताल्लुक बांधा है, किसके साथ मैंने अपने मामलात किसके साथ रखे हैं, तो इंसान फिर ये सोच के सजदे में पड़ा हुआ है। और फिर जब जो सजदे की हालत है ना, वो इंसान की वो हालत है कि ये अल्लाह अकबर इतनी अजीम चीज़ है कि जो मुसलमान अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम के अंदर चला जाएगा, वो फिर किस वजह से निकाला जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उसके सजदे के निशानों से पहचानेंगे कि ये मेरा उम्मती है, और फिर सजदे के आज़ा को जहन्नुम की आग भी बुझा जला नहीं सकती, जहन्नुम की आग भी उन जगहों को, ये जो सात सज्दे के मकामात हैं, सात सज्दे की हड्डियां हैं जिन पे इंसान सज्दा करता है, इनको वो आग भी बेबस है, वो इनको नहीं जला सकती। तो सुबहान अल्लाह के ये वो आज़ा हैं जिनके ऊपर इंसान सज्दा करता है, अल्लाह ताला इन आज़ा की भी कितनी तकरीम करता है कि जहन्नुम की आग को हराम कर दिया इनके ऊपर। और सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि जो है नबी अलैहि सलाम से कि या रसूलल्लाह, इतनी मखलूक के अंदर आप कैसे अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे, आप कितने लोगों में आपको कैसे पता चलेगा मेरे उम्मती कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने अगर बहुत सारे घोड़े हों और उनमें से किसी घोड़े की पेशानी पे कोई निशान हो, तो क्या तुम उस घोड़े को पहचान सकते हो? सहाबा ने फरमाया, हाँ हम पहचान लेंगे। तो आपने फरमाया, मैं भी अपनी उम्मत को सजदे के इन्हीं निशानात के जरिए पहचान लूंगा, यानी जब इंसान ये सजदा करता है ना, तो उसके इन निशानों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पहचानेंगे, और अगर किसी के पास ये निशान ही ना हो तो फिर वो क्या करे, वो निशान ही ना हो तो फिर इंसान तो जाहिर ही बात है ये भी हमारी निशानी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात पाने की, कि इस तरह से वो पहचानेंगे। आप मुझे बताएं कि हाँ हमारे पास ये निशानियां हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने माथे को रगड़ना शुरू जाएं कि माथे पे निशान पड़ जाएं और ऐसे, बल्कि वो अल्लाह ताला उस दिन अता फरमाएगा इन हाथों को, घुटनों और पैरों और माथा और नाक, जो जो भी ये आज़ा हमारे सजदे के वक्त ज़मीन के साथ टच होते हैं, ये होंगे जो सजदे के निशानात होंगे। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने सजदे में जाने वाले जो उसके आगे सजदे में बिछ जाते हैं उनकी कितनी तकरीम की है अल्लाह ताला ने, कितना उनको शर्फ दिया, कितना उनको मकाम दिया। तो अल्लाह ताला हमें वाकई सही से सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज की जो जिक्र है वो भी रब के बारे में ही है, क्योंकि हम बार बार अपनी नमाज में रब रब की तकरार करते हैं, और जो आज की आज का जिक्र है उसके अंदर यही बात है कि हम वाकई इस पे राजी हों कि अल्लाह ताला हमारा रब है। तो जिस मुसलमान बंदे ने सुबह और शाम 3 दफ़ा, सुबह यानी फजर के बाद और शाम को यानी असर के बाद 3 दफ़ा ये कलिमात पढ़ लिए, क्या रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पे लाजिम है कि वो कयामत के दिन इस बंदे को अपनी रजा अता फरमाएगा, अल्लाह यानी उससे राजी हो जाएगा, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उस दिन हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाएंगे जिसने ये कलिमात कहे। और क्या मतलब है, यानी अल्लाह ताला के रब होने पे राजी हुआ, मतलब अल्लाह तू मेरा रब है, मैं यानी इस पे खुश हूँ, मैं इस पे राजी हूँ, मैं इसमें मुतमईन हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। रब कौन होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, जो खालिक है। और याद रखें, जितने माबूदाने बातिल हैं ना, जिनको लोग पुकारते हैं, जिनको लोग खुदा समझते हैं, किसी के बारे में कोई आज तक क्लेम नहीं कर सका कि उसने सारी कायनात बनाई है। सिर्फ मुसलमान है जो कहता है कि सारी कायनात का खालिक, एक एक जर्रे का खालिक, पैदा करने वाला अल्लाह है। कोई नहीं कह रहा ईसा अलैहि सलाम है, कोई नहीं कह रहा भगवान है, कोई नहीं कह रहा फलां है फलां, कोई किसी के बारे में क्लेम कर ही नहीं सकता, इसमें वो बेबस है। सिर्फ एक मुसलमान कहता है अल्लाह है जो मेरा रब है, यानी वो खालिक है इन सब चीज़ों का। एक छोटी से छोटे वायरस से लेके बड़े से बड़े सितारे, सैारे और कायनात के बड़ी बड़ी चीज़ों तक वो खालिक है और वो मालिक भी है। उसने बना के छोड़ नहीं दिया, वो उनकी मिल्कियत रखता है। यानी मालिक चाहे मेरी ज़िंदगी है, या चाहे सितारे सैारे बड़े से बड़े हैं, और मेरी एक एक सांस है, हर चीज़ का मालिक वो है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा जिस्म है मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरी आंखें मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी देखूं, मैं जो मर्जी खाऊं, मैं शादी करूं या ना करूं, ऐसे ही लिविंग टुगेदर करूं, या मैं जिसके साथ मर्जी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखूं, या मैं जिधर मर्जी जाऊं, या मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, या मैं जो मर्जी जुबान से फोहश गोई करूं या ना करूं, या मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, या मैं इस वक्त सोऊं या ना सोऊं, या मैं रोज़ा रखूं या ना रखूं, मेरी मर्जी है। नहीं, मेरी मर्जी नहीं है, कोई और है जो मालिक है मेरी इस ज़िंदगी का। ये मैंने मान लिया जब मैंने कहा ना रदीतु बिल्लाहि रब्बन, तो इसके अंदर ये बात शामिल है कि मैंने ये मान लिया कि मेरा मालिक अल्लाह है। मैं क्या हूँ फिर? मेरी भी कोई चीज़ है? नहीं, मैं अमीन हूँ। जैसे ना बैंक होता है, बैंक के अंदर लोगों ने मसलन अपने पैसे रखवाए हैं, अच्छा अब वो कहते हैं वो मालिक है, जो बैंक में काम करता है क्या वो मालिक है? वो पैसों को हालांकि इधर रख रहा है, उधर रख रहा है, गिन रहा है, हिसाब कर रहा है, चेक रखता है, उसका सारा संभाल संभाल के रखता है, लेकिन वो अपने तौर पे उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। जब तक वो पैसों का जो रखवाने वाला है, पैसे देने वाला है, जब तक वो ना इसको इजाजत दे, जब तक वो ना कहे कि भाई देखो इतने इसमें से यहाँ भेज दो या इतने ये कर दो, वो खुद नहीं कर सकता। वो सिर्फ अमीन है, उसकी सिर्फ एक जॉब है, उसकी छोटी सी एक ड्यूटी उसके ऊपर लगी हुई है, उसको एक अमानत दी गई है। समझे? इसी तरह हमारी ये जिंदगी, हमारा ये जिस्म, हमारा ये वक्त, हमारे पास जो माल है, हमारे पास जो घर बार है, हमारी औलाद है, हमारे पास जितनी भी नेमतें, सब अल्लाह ताला ने हमें अमानत दी है। हम अमीन है बस, हम मालिक नहीं है, इसका मालिक अल्लाह है। जैसे किसी ने ये कहा ना कि ये इस घर के मालिक आप हैं, वो कहने लगा, वो बंदा इसमें इतनी आजी थी, उसने कहा नहीं मैं नहीं हूँ मालिक इसका, वो उसका ही घर था, वो कहता नहीं मैं नहीं मालिक, अल्लाह मालिक है। तो ये अपने दिमाग के अंदर बार बार रिवाइज करना चाहिए कि मालिक अल्लाह है, ये मेरे जिस्म का मालिक अल्लाह, ये मेरे हाथ पैर का मालिक अल्लाह, ये मेरी सांसों का मालिक अल्लाह, वो मालिक है। अब मालिक जैसे चाहे वैसे ही मैंने इन चीज़ों के साथ काम करना है, मालिक के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर और उसके हुक्म के बगैर मैं कोई चीज नहीं कर सकती। ठीक है? और रदीतु बिल्लाह रब्बो व बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम मेरा दीन है, मैं इस पे मुतमईन हूँ, मैं इस पे राजी हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद इट कि मेरा रिलीजन इस्लाम है। अब इसके बाद तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं किसी को कोई पूछे आप मुसलमान हैं, ओ अब मैं घबरा रही हूँ, इसको पता ही ना चल जाए मैं मुसलमान हूँ। मैं कोई अपनी ऐसी शनाख्त ना रखूँ, ऐसा नाम ना रखूँ, ऐसा हुलिया ना रखूँ कि किसी को भी पता चले कि मैं मुसलमान हूँ, भाई छुपा के रखूँ, क्योंकि हमें तो शर्म आती है और लोगों को पता चल जाएगा ये मुसलमान है तो वो फिर हमें ऐसे देखेंगे और फिर वो ये कहेंगे, या मैं हिजाब लेना शुरू कर दूं कि लोगों को पता चल जाएगा कि मैं मुसलमान हूं, तो मैं चाहती ही नहीं हूं किसी को पता चले। इसलिए अपने ऐसे ऐसे ही नाम रखो, अपने बच्चों के भी ऐसे नाम रखो, बस घुल मिल जाए लोगों के अंदर, पता ही ना चले ये मुसलमान है। लेकिन मैं तो अपने इस्लाम पे प्राउड हूं, ये बात कहती, आई एम प्राउड ऑफ बींग अ मुस्लिम, रदी तो बिल्लाही रब्बा व बिल इस्लामी दीनन का मतलब यही है कि मैं इस पे खुश हूँ, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, कि मेरी आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम और मैं इस्लाम को चूज कर रही हूँ अपनी खुशी से, अपने दीन के लिए, और सारों को बाकियों को छोड़ रही हूँ, सबको रिजेक्ट करती हूँ, इस्लाम को मैं अपनी खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ, ये नहीं कि चूंकि मैं बॉर्न हो गई तो इसलिए। अच्छा ये बताइए, अगर आप एक इस्लामी घराने में पैदा ना होते तो क्या फिर भी आप मुसलमान होना पसंद करते? यही बात बताएगी कि हमने इस्लाम को कितना समझा है। अगर तो नहीं समझा होगा तो फिर कहेंगे हाँ हम तो वही होते जो हमारे माँ बाप थे, इसका मतलब आपने समझा ही नहीं इस्लाम आज तक कि क्या है। और अगर आप कहते कि नहीं इस्लाम की हक्कानियत मेरे दिल के अंदर है, मैं चाहे जो भी होती लेकिन मैं फिर भी इस्लाम कबूल कर लेती क्योंकि इतना ज़्यादा मैं इससे मुतासिर हूँ और मैं जानती हूँ कि यही हक है और यही सच है और यही है जो वाकई अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला सच्चा दीन है, तब तो इसका मतलब है कि वाकई आप राजी हैं इस्लाम के दिन, वरना तो आप जस्ट एक बॉर्न मुस्लिम हैं। अगर माँ बाप क्रिश्चियन होते तो क्रिश्चियन होते, हिंदू होते तो हिंदू होते, फिर आपको क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी हो जाना था, फ़र्क क्या पड़ता, इस्लाम मिलता या कुछ भी मिल जाता, इट्स ओके, कुछ तो लेना ही था ना, तो माँ बाप से वो ले लिया, तो इसका मतलब आपने इस्लाम को नहीं जाना, इस्लाम की हक्कानियत आपके दिल में नहीं है अभी, कि यही हक दीन है और इसके सिवा सारे अदियान बातिल हैं, ये है वाहिद हक दीन दुनिया में। तो मैं इस पे राजी हूं, और भी मोहम्मद नबी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे मैं राजी हूं, मैं खुश हूं इस चीज के ऊपर कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि उन्होंने जो दीन मुझे दिया वो सही दीन है, उन्होंने जो बातें हमें बताई वो बिल्कुल सच बातें हैं, बिल्कुल हक बातें हैं, वो ही हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आई, उन्होंने कोई बात अपनी तरफ से नहीं की, उनके अखलाक आला, उनकी ज़ात आला, वो इतने कामिल इंसान थे, इंसानों में सबसे कामिल इंसान, मैं उनके नबी होने के ऊपर खुश हूँ। ये बहुत बड़ी डिक्लेरेशन है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि उस दिन बस तोते की तरह रट के तो हमने ये 3 दफ़ा कह दिया, चलो जी बात खत्म हो गई, अब उस दिन अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, नहीं, आज आप अल्लाह ताला के रब होने पे राजी होंगे, उसके दीन पे इस्लाम पे राजी होंगे और उसके नबी के ऊपर राजी होंगे, तो कल अल्लाह पे आपसे राजी होगा, और राजी नहीं है लेकिन मुंह से कहते जा रहे हैं, दिल के अंदर हर वक्त यही है कि क्या है हमारे तो मसले ही नहीं खत्म होते, हम तो मुसलमान हो के क्या मुसीबत के, हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए तो कितने मसाइल हैं, ये तो इतनी पाबंदियां हैं भाई, ये भी ना करो ये भी ना करो, ये हलाल ये हराम, देखो सारी दुनिया कितने मजे में फिर रही है, और इस्लाम की वजह से हमारे ऊपर तो इतनी कैद है, रिस्ट्रिक्शन है, हमारा तो दिल करता है ये सारी तोड़ के तो हम भी वैसे ही बन जाए, तो फिर क्या आप राजी हुए अपने दीनों ने? और जगह जगह पे आप हर जगह पे हर मामले में आप इस्लाम की चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं और दूसरों की चीज़ों को जा जा के आगे सीने से लगाते हैं, तो आप क्या राजी हैं फिर? अगर आपको वो इतने पसंद हैं उनके तरीके उनके सारे मामलात, तो फिर आप इस्लाम के दीन होने पे राजी तो ना हुए ना, इस्लाम की तो आपको पाबंदियां लगती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी और उनके वाला मिशन और उनकी वाली बातें जो है ना वो आपको पुरानी लगती हैं, आउटडेटेड लगती है, और अल्लाह ताला का तो हर हुक्म ही आपको लगता है कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको तो बस रिजेक्ट भी कर दें तो कोई बात नहीं, और वैसे भी हमसे नहीं ये किया जाता, तो फिर क्या राजी हैं हम? तो सर आंखों पे लें तो तब हम राजी हैं, फिर इतना हमें महबूब हो अल्लाह ताला की हर बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कहा हुआ हुक्म और दीन इस्लाम का हर फैसला, इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला हर फैसले पे भी जो तकदीर के फैसले हैं उस पे भी हम राजी हों, तो तब हैं हम अल्लाह ताला की रब होने पे राजी। और आज की जो दुआ है वो दुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये दुआ कर लेगा उसके इतने गुनाह भी हों कि वो जंग के मैदान से भागा हुआ हो, यानी जो कबीरा गुनाह उसने किया हो, तो तब भी अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। और वो क्या अल्फाज हैं, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, कि मैं तौबा करती हूँ इस्तग़फार करती हूँ ओ अल्लाह ताला की जनाब में, वो जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ही हय है और क़य्यूम है, और मैं उसके सामने अपने गुनाहों की बख्शिश चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाए, हम सबको माफ़ कर दे और अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।